This is Akashvani. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can, of course, call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I'm Gaurav Dhawan Lal, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो गया शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं. जैसा कि आज सोमवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं. ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं. आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता, इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें. आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर बाजार विशेषज्ञ विजय भूषण. विजय जी, आपका मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद. बहुत बहुत.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवन लाल.
थैंक यू स्पर्श एंड विजय, वेलकम टू द प्रोग्राम.
थैंक यू मैम.
अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स टॉक्स विद मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू इन न्यू दिल्ली. बोथ साइड्स अग्री टू इनिशिएट टॉक्स ओवर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस कंटिन्यू अ डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव सेशन. सेंसेक्स प्लंजेस ओवर 600 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,800. And crude oil prices gain amid supply concerns from the major oil-producing region. Brent crude is trading at $79.44.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिजू के साथ बैठक की. दोनों देशों के मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी. घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में लगातार छठे सत्र में गिरावट जारी. सेंसेक्स 600 अंक से अधिक गिरा और निफ्टी 24,800 के नीचे बंद. और प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र से आपूर्ति संबंधी चिंताओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी. ब्रेंट क्रूड $79.44 प्रति बैरल के स्तर पर.
We begin with our first headline story. Prime Minister Narendra Modi has said that India has always played a role of a first responder to the Maldives. After holding delegation-level talks with the President of Maldives, Dr. Mohamed Muizu, in New Delhi, Prime Minister Modi, in a joint press statement, described the Maldives as a close friend, which had an important position in India's neighbourhood policy and Sagar vision. Prime Minister Modi also virtually inaugurated the runway of Hanimadhu International Airport with Maldives President Dr. Muizu and also introduced RuPay card payments in the Maldives. Several memorandum of understanding, MOUs, were signed between the two nations, including in the area of combating corruption, the judiciary and youth and sports. Both sides have agreed to initiate discussions on a bilateral free trade agreement, take steps to boost tourism, to promote bilateral investments and closer engagements between the two business chambers and entities. Both countries have also adopted a comprehensive economic and maritime security partnership to promote stability in the Indian Ocean region. After the talks, India also handed over 700 social housing units to the Maldives, built under the Export-Import Bank of India's Exim Buyer Credit Facilities. Well, we are ready to welcome our first caller. First off the blocks from Delhi. Keshav, welcome to the program. Please ask your question. I think it's been disconnected. We have another caller from Kolkata this time. Vikash Mehto. Vikash, welcome. Please ask your question. Namaste, Vikash. हाँ जी बोले.
डिफेंस सेक्टर, पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये चारों सेक्टर में मेरा निवेश है. 10 साल का होराइजन है, तो अभी इसमें सभी डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो इसमें अभी एवरेज कब करना चाहिए? मार्केट थोड़ा धीर हो जाए उसके बाद या अभी?
देखिए, एवरेज करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि एवरेज करने में कई बारी आपको लगता है कि मैंने आज खरीदा और एवरेज करने की कोशिश की लेकिन फिर मार्केट और गिर रहा है। तो इसमें एक तरीके से आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी परचेज प्राइस है, मतलब जिस आपकी एवरेज प्राइस जो है, उससे अगर 10% आपको नीचे मिलता है तो आप उस शेयर को एवरेज कर सकते हैं। अगर आपकी कन्विक्शन है तो कन्विक्शन तो उस पे निर्भर करती है कि कंपनी कैसी है, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं। तो मेरी तो आपको सलाह है कि कोई आपके जो भी क्या कहते हैं प्रोफेशनल है जो आपको गाइड करते हैं, उनसे बात करके ही ये काम करें।
और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं मुंबई से, हसमुख डेडिया। हसमुख जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्र, कैन यू हियर मी?
जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज सवाल पूछें।
या मेरा क्वेश्चन ये है कि आरबीआई की जो पॉलिसी अभी होने वाली है, तो उसमें जो अपने गवर्नर साहब है वो क्या डिसीजन लेंगे? जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे लेंगे या होल्ड करेंगे, आपकी क्या राय है?
जी विजय,
खैर ये आरबीआई की पॉलिसी का तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने देखा होगा, उम्मीद ये है कि इसके अंदर कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जो डिपॉजिट बैंकों के हैं वो उससे ज्यादा तेज गति से बैंकों को जो क्रेडिट जो दे रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इस पॉलिसी में भी रिजर्व बैंक कोई भी उसमें कोई बदलाव ना करे।
जी, और अब नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। ये गिरावट अधिकतर सेक्टर में बिकवाली के कारण देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 600 अंक से अधिक टूटा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,800 के नीचे बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 638 अंक यानी 0.7% की गिरावट के साथ 81,050 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 218 अंक यानी 0.8% की कमजोरी के साथ 24,795 पर रहा। एनएसए की 56 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ और 131 निचले स्तर पर रहीं।
Right. Before we take a more detailed look at the stocks, we'd like to welcome from Mumbai, Nikhil. Nikhil, please ask your question.
Good evening, Team Market Mantra, and good evening to everyone at the studio once again. I have two questions, sector-oriented. I want to know how would the PSU banks pan out, and how would the steel industry would work? These two things. With the choppy way the markets are now, how do you think that is going to happen?
Right.
Well, I think as far as the PSU banks are concerned, if you will take a closer look, you will find, there are certain banks where the price earning is fairly comfortable. I would suggest any large PSU bank with a price earning of less than 10 times could be looked at for investment. And as far as the steel sector is concerned, metals have been one of the areas where the markets have not, this sector has not really been hit by the downturn. So I think steel sector is interesting, but perhaps at the moment, or maybe you can find value in other sectors.
जी, और हमारे साथ केशव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। केशव जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना।
नमस्कार सर।
जी नमस्कार, प्लीज सवाल पूछिए।
सर, जैसा कि आज हम आपके ब्रांच में गए थे प्राइवेट बैंकों में, तो कुछ इन्वेस्ट करना था हमने, और इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने हमें दो स्कीम बताई। एक तो एफडी में जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है उस तरह से बताया, और दूसरा उन्होंने ये बताया उसमें एक तो इंश्योरेंस भी जुड़ा हुआ है और आपको 2,00,000 रुपये देना है इस साल, फिर आपको 83,000 आपके अकाउंट में एक साल बाद आपके रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह करते हुए 12 साल 2,00,000 रुपए देना, तो हमारे 24,00,000 रुपए उनके पास जमा हो जाएगा और हर साल हमारे को 83,000 वो देते रहेंगे प्राइवेट फर्म में। तो इसके बाद में उन्होंने ये बताया कि 13वें साल में आपको 2,00,000 नहीं देना, तो 25 साल तक आपके पास 83,000 रिटर्न आता रहेगा। इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, इसमें कोई हादसा हो जाता है तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो आपको जितना टोटल 25 साल बाद बनेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमें ये समझाइए ये क्या स्कीम, ये बैंक प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंकों में ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट वालों में ऐसा है।
जितेंद्र जी, जब भी इंश्योरेंस कोई भी बैंकर आपको बेचना चाहे तो उसको एक चीज पूछ लीजिए कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जब आप वो पूछेंगे तो आप देखेंगे कि केशव जी, आप देखेंगे कि ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो बैंक की एफडी के रेट से कम होगा। तो ये सब चीजें ऊपर से बनाई जाती हैं इस तरीके से कि आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से आप इंश्योरेंस वाला जो है उसको आप छोड़ दीजिए, और जो आप बैंक में गए एफडी करने तो आप बैंक में एफडी ही करिए।
राइट, बिफोर वी वेट फॉर आवर नेक्स्ट कॉलर, लेट्स टेक अ डिटेल लुक एट द स्टॉक्स। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसीज एक्सटेंडेड देयर लॉसेस फॉर द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव सेशन टुडे, लेड बाय सेल ऑफ अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। द बीएसई सेंसेक्स प्लंज्ड ओवर 600 पॉइंट्स, व्हाइल द निफ्टी 50 सेल्ड बिलो 24,800. At close, the Sensex declined by 638 points or 0.7% to close at 81,050, while the Nifty lost 218 points or 0.8% to settle at 24,795. In the NSE, 56 companies hit their 52-week high, 131 hit their 52-week low. The broader market at the BSE also ended in negative territory. The mid-cap index was 1.8% down and the small-cap index tanked more than 3%. In the Sensex index, 23 out of 30 companies ended in negative territory. The top laggards today were Adani Ports, which declined more than 4%, NTPC lost 3.5% and SBI Bank fell more than 3%. Conversely, the top gainers today were Mahindra & Mahindra as well as ITC, which gained over 1.4% each. Bharti Airtel increased 1.3% and Infosys added 0.8%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of 20 sectors locked losses. The top laggards today were utilities, which shed more than 3.5%, power as well as services fell more than 3%, and commodities slipped more than 2.5%. Meanwhile, the only two gainers today were tech, which added nearly 0.5%, and information technology, which gained 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as out of 4,178 companies, shares of 636 advanced, 3,422 declined, and 120 remained unchanged. Welcoming our next caller, Preetam from Delhi. Preetam, welcome to the program. Preetam?
Hello.
Hello, Preetam. Yes, please. Welcome. Please ask your question.
Namaskar, madam. Namaskar.
Ah, namaskar, ji.
मैं पता करना चाह रहा हूँ मैडम कि अगर हम शेयर मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं तो उसका क्या शुरू से क्या तरीका होता है एसआईपी के जरिए, और क्या ये तरीका, क्या ये समय ठीक है मार्केट में एंटर के लिए?
देखिए, ये समय तो ठीक है, और लेकिन मेरे आपको ये सलाह है कि आप इस समय म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में एंटर करें और डायरेक्ट मार्केट में स्टॉक्स नहीं खरीदें। जिस तरह का मार्केट में, जैसा आपने सुना होगा कि 6 दिन लगातार मार्केट गिर रहा है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप एक नहीं बल्कि 30 या 40 शेयर की एक बास्केट में आपका निवेश होता है। तो उसको देखते हुए, और आप की बात से लग रहा है कि आप पहली बारी निवेश करेंगे, मेरे ख्याल आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप करिए, और जो उनका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके हिसाब से करिए।
जी, और अगले कॉलर से पहले हम रुपए का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले बिना किसी बदलाव के 83.97 रूपये के स्तर पर दर्ज किया गया। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 102.56 के स्तर पर था। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से जितेंद्र। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछे अपना।
हाँ, जैसे अभी यहाँ का मार्केट ओवर वैल्यूड है तो मार्केट डाउन भी हो रहा है, तो विदेश का कौन सा मार्केट थोड़ा सस्ता है, जैसे दक्षिण कोरिया या नैसडेक, तो हम ETF के माध्यम से उसमें जाना चाहते हैं, तो अभी कौन सा मार्केट सस्ता है विदेश का?
जितेंद्र जी, आप कोई भी बाहर के मार्केट में बिना फॉरेन करेंसी के तो नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए, उसमें आपको अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। उस मतलब मेरे ख्याल से वो काम तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि उसमें निवेश करते हैं। और क्या अभी जो मार्केट सबसे अच्छा कर रहा है वो है चाइना का मार्केट। तो लेकिन ये आगे अच्छा करेगा कि नहीं कोई नहीं कह सकता। तो जैसा कि आप जानते होंगे, स्टॉक मार्केट में बदलाव आता रहता है और इस समय जो भी अच्छा लगता है वो हो सकता है एक हफ्ते बाद
ना अच्छा लगे,
वो ना अच्छा लगे। तो ये सब मार्केट में चलता रहता है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप भारतीय शेयर बाजार की तरफ अपना रुख रखें। और जब हम लोग भारतीय शेयर बाजार को नहीं समझ सकते तो बाहर की कंपनियों के बाहर के शेयर बाजार को कहां से समझेंगे।
राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। फ्रॉम कोलकाता, कौशिक सेन गुप्ता। मिस्टर कौशिक, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हेलो,
यस प्लीज मिस्टर सेन गुप्ता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग टू ऑल।
गुड इवनिंग।
Actually, there are 2-3 questions. One is that in the current scenario, which are the sectors in Indian market that we should look into now? And the current downward trend, what it is expected, but how much it will take to stabilize the downward trend? These are some questions. Another question was, actually, I am having some paper shares of my father and mother, actually joint. These are around 15 to 20 years old. Now, there was a scenario that I could not redeem due to some illness of my mother, because it could not be withdrawn from the demat account of any agency or a broker. So now my mother has expired, actually. So how can I redeem those shares? I heard about some IEPF account. But in IEPF account, it is an all India basis and it is only having offices in Delhi. Other places, there are no offices. So what can be the process for redemption of this IEPF from the IEPF account? Because I have gone through several broker agencies and they are also unable to say. I am having a demat account of my father.
Got it.
In 2-3 agencies.
Right.
Ji Vijay ji.
Well, I think you have asked 3 questions.
Ji.
First relates to the sectors which you can invest in. Frankly, let me make a disclaimer that these are sectors I like. That it's not necessary that you may go by that. I think you should still refer to whoever gives you advice on stock market. But the sectors I like is information technology, manufacturing, infrastructure and healthcare. So that now coming to the expected trend, the trend definitely is on, is of the market going down. Looking to current position, very difficult to say when this is going to stop. But I think I can tell you is that along with the FII selling, which has taken place and which actually started this trend, even the domestic investors have been selling. And that is more than obvious by today's report, which says that, the market has fallen by 0.7 or 2.8%. But the if you look at the mid-cap index and the small-cap index, they have fallen by a much higher percentage. In fact, the small-cap index has fallen by 3%. So this shows that, mid-cap and small-cap is more dominated by Indian investors. So I think there is a all-down selling. And as you know, and whatever the fundamentals, if there is selling and it's continuing, you have to wait for people to feel that, okay, now enough has been done. So I think there is time for caution. And IEPF is a very big subject. It's very clear that these shares, the dividend was not in cash for a period of 7 years. So there are some people who specialize in IEPF. I think if you will ask your advisor, they will put you in touch with such people, and there will be a cost because there is a whole lot of paperwork that is to be done. So unless, of course, you can do it yourself, which is ideal. But IEPF, is that an if? Normally, DMAT shares, if you have a DMAT account, they don't go in IEPF unless you have not updated your bank account and therefore the dividends could not be encashed. So I think you need expert help for this to able to understand and to navigate in this area.
Ji, bilkul. और थाने से हमारे साथ जुड़े हैं गुरुनाथ. गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछिए अपना.
सर नमस्ते.
जी नमस्कार.
विजय सर को भी नमस्कार.
नमस्कार.
सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये बीच में जो सेबी का एक रिपोर्ट आया था उसमें जो फ्यूचर एंड जो ऑप्शन में जो इन्वेस्ट लोगों ने किया था वो करीब 1,31,00,000 का लोगों का जो 1,81,000 करोड़ तक का मतलब एक लॉस हो गया, डूब गया पैसा. तो सर ये जो मतलब हमारे मतलब ये डीमैट अकाउंट तो काफी अच्छे मतलब बहुत बड़े हैं, 16-17 करोड़ हो गए. तो सर ये मतलब जो नए जो इन्वेस्टर होते हैं कि मतलब इन्होंने किस तरह मतलब प्रिकॉशन लेकर ये इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 100 आदमी जब इन्वेस्ट करते हैं तो साथ ही लोग कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं. तो सर इस पे थोड़ा सा. थैंक यू.
देखिए ये जो सेबी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक चीज नहीं बताई गई कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितने लोगों की हेज्ड पोजीशन थी, मतलब उनका कैश मार्केट के अगेंस्ट उन्होंने ये सौदा किया था, और किन की अनहेज्ड पोजीशन थी जिसको हम लोग नेकेड पोजीशन भी बोलते हैं. तो खैर क्योंकि वो नहीं है, लेकिन एक जो चीज सामने निकल के आ रही है वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल साफ है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक सीजनड इन्वेस्टर होना चाहिए. आप लोग, बहुत सारे लोग सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाते हैं तो जो है इसलिए भी नुकसान होता है. तो इसमें आपको ध्यान से काम करना चाहिए. मेरी तो सलाह है कि आप कैश मार्केट में रहिए और उसके बाद जब आप 3 या 4 साल उसको समझ लेते हैं फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाइए.
बिफोर वी टेक आवर नेक्स्ट कॉलर, वी हैव अ स्मॉल स्टोरी. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी मीटिंग लेड बाय गवर्नर शक्तिकांत दास commenced today. The 6-member committee started deliberations on interest rates, analyzing the state of the economy amid tensions in West Asia. The RBI governor will announce the MPC decision on October 9th. Welcoming from Delhi, Akash. Akash, welcome. Please ask your question.
Namaskar, sir.
Namaskar.
Hamare father senior citizen hue isi saal. तो उनके पास कुछ अमाउंट 25-30 लाख के करीब है, वो इन्वेस्ट कर रखा है एफडी में. तो हम चाहते हैं कि क्या उनको कुछ मार्केट में जाना चाहिए या आप उसी में ही बने रहना चाहिए, या सोना खरीद के इसके अलग से इन्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल सोने का रेट बहुत हाई और एकदम उल्का भी हो जाता है. और दूसरा एक मेरा सवाल साथ में ये है कि अगर हम 5 बैंकों में अलग अलग अमाउंट रखें तो वो सेफ ज्यादा रहेगा. तो अब तक कहते हैं कि 5 लाख तक की एक बैंक गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, तो क्या उसमें हमें 5-5 लाख रुपए का 5 बैंकों में रखने से, और उसके बाद हम G15 फॉर्म भरते थे हर साल, तो अब हमें H15 भरना पड़ेगा, इसके बारे में कृपया समझाएं. धन्यवाद.
देखिए आपने जो बात कही, अगर किसी की उम्र 80 साल की हो गई है और आज तक वो फिक्स डिपॉजिट या उनका पैसा सारा निवेश फिक्स डिपॉजिट में है, तो मेरी तो सलाह है कि आप फिक्स डिपॉजिट में ही रखिए. उसको कहीं आप बाहर ले जाएंगे, आपको तो ये भी वरी हो रही है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा, क्योंकि 5 लाख की लिमिट है तो 5 लाख के अंदर अंदर रखना है. जब आपको इतनी फिक्र है और आप चाहते हैं कि हमको हम 4 या 5 बैंकों में रखें, तो आप और कहीं निवेश करने का तो विचार छोड़ ही दीजिए. आप तो वहीं पे एफडी रखिए. और मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसे हैं तो चाहे वो 20-25 लाख एक बैंक में भी है तो वहां पे पूरी सेफ्टी है. तो उसको सोचते हुए आप देख लें. बाकी जो टीडीएस वाला इशू है वो तो अब क्योंकि आपने रेज किया है वो तो उसका आप ध्यान करके उसको उस हिसाब से रख सकते हैं कि वो टीडीएस नहीं लगे. बाकी तो आप वो फॉर्म भी दे सकते हैं उनको.
जी आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर. प्रमुख एशियाई सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. जापान के निकेई में 1.7% की वृद्धि दर्ज की गई. हांगकांग के हैंगसेंग में 1.6% की उछाल देखने को मिली. दक्षिण कोरिया का कॉस भी 1.5% से अधिक के फायदे में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स 0.2% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। चीन का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा। वहीं यूरोपीय शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.5% मजबूत रहा और फ्रांस के कैक में 0.1% की बढ़त देखी गई। वहीं जर्मनी का डैक्स 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। और अब हमारे साथ कोलकाता से डी महतो जुड़ चुके हैं। महतो जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए। हेलो,
गोल्ड में अभी कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा? गोल्ड मिलना या सोवरेन गोल्ड बोन है, कौन सा सही
है? आई थिंक व्हाट ही वांटेड टू नो वाज कि गोल्ड, हाउ शुड दे इन्वेस्ट इन गोल्ड? शुड दे टेक गोल्ड बॉन्ड्स और फिजिकल गोल्ड?
आई थिंक यू सी, यू कुड डायरेक्टली गो इन टू एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फॉर गोल्ड, और मेनी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, थ्रू देम ऑल्सो यू कैन बाय गोल्ड। तो आप इसको जरूर इस तरीके से सोने में आप निवेश कर सकते हैं। ये ऑफकोर्स पेपर गोल्ड है, आप तो वैसे डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, कई जगह पे आपको गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन उसमें प्रीमियम उसको बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप कोई ईटीएफ लेते हैं या फिर कई म्यूचुअल फंड भी आपको गोल्ड के लिए, आप उसमें उनके थ्रू निवेश कर सकते हैं, तो ऐसा कर लीजिए।
फ्रॉम गुरुग्राम मिस्टर पीके बैनर्जी। मिस्टर बैनर्जी, योर क्वेश्चन प्लीज।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग
सर। जैसे अभी आप बता रहे हैं सोना खरीदने के बारे में, हमें दिल्ली आए थे तो वहाँ एक होलसेल मार्केट में सोना देखने गए थे, वहाँ ईंट की ईंट, बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं जो सोने की मिलती है एक एक किलो की, तो क्या हम क्या चीज देखें उसमें जो प्योर, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैम्प लगी मिलती है, क्या है इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे? क्या गोल्ड डायरेक्ट हम खरीदने में, क्योंकि गोल्ड तो कभी भी हम लेके इधर से उधर बेच सकते हैं, और जो बैंकों में तो ये टाइम लग जाता है, 6 घंटे बाद बैंक खुलेगा, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कहीं भी इसको जल्दी से जल्दी सेल।
देखिए, आप गोल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ये बड़ा इतना आसान नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि 6 घंटे लगते हैं, आपको बैंक में भी आप सोच रहे हैं, लेकिन बाहर भी शायद इससे आपको ज्यादा समय लग जाएगा, और अगर नहीं लगेगा तो आपको बहुत उसकी कीमत काफी कम मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इसको तो आप ध्यान से ही करें, और अगर आप डायरेक्टली लेना चाहते हैं और आप 1 किलो का गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जिनसे लिया है उनको बात कर लीजिएगा, वापस करने के समय क्या रहेगा।
Right, so from actual glittering gold, we move to black gold, crude oil. Oil prices extended gains today, fueled by concerns of a potential disruption to exports from major oil-producing region amid escalating conflict in West Asia. In the global crude market, Brent crude was trading more than 1.5% up at $79.44 per barrel, and U.S. West Texas Intermediate was trading nearly 2% up at $75.84 per barrel.
सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.34% गिरकर 76,000 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.84% गिरकर 91,870 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। और श्रोताओं, वक्त है अब इस चर्चा को यहीं विराम देने का। विजय जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
थैंक यू विजय फॉर कमिंग ऑन टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Maldives President Mohammed Muizu in New Delhi. Both sides agree to initiate talks over free trade agreement. Domestic benchmark indices continue their downward trend for the 6th consecutive session. Sensex plunges over 600 points. Nifty settles below 24,800. And crude oil prices gain amid supply concerns from major oil producing region. Brent crude trading at $79.44. And that's it for this program. Namaskar.
Namaskar. Namaskar. Market Center.